ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
स्वयं शक्तिशाली भी है और साहसी भी है। अक्सर गरियान और प्रगल्भ वृत्तियां दोनों का समानार्थक ही होता है। शक्तिशाली के पास ही साहस भी होता है और कमजोर के पास क्या साहस हो, है ना? लेकिन कभी कभी शक्तिशाली व्यक्ति संकोच करता है। यदि शक्तिशाली व्यक्ति भी दैवी संपदा से युक्त होगा तो वो संकोच करेगा, और यदि शक्ति भी है, शक्तिशाली भी है और आसुरी संपदा भी हो तो वो संकोच नहीं करेगा, वो तो साहस ही करेगा। और साहस क्या है? दुस्साहस ही करेगा वो। ये हाथी की विशेषण है, हाथी का ऐसा है। हाथी कौन सा हाथी? मन करी, मन रूपी हाथी। आपने मन को जीता है कि मन ने आपको जीता है? आज तक के एक्सपीरियंस, आज तक के अनुभव क्या कह रहा है? मन को आपने जीता है कि आपको मन ने जीता है? हैं? आप जो कहते हो मन वो करता है कि मन जो कहता है वो आप वो करते हो? अक्सर ज्यादा करके लोग जो है मन के कहना ही करते हैं, समझे कि नहीं? मन के पीछे लगे हैं, मन के कहना करते हैं। इसलिए तो एक भक्त ने, महात्मा ने बड़ा सुंदर लिखा है भाई, मुझे वो श्लोक बहुत अच्छा लगता है। आत्मभूपतिरयम पुरातन। ये जो आत्मा राम है पुरातन भूपति है, खानदान राजा है, ये सम्राट है। ये एक वर्ष का प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी की तरह। पुरातन है मनमोहन सिंह 10 वर्ष के प्रधानमंत्री, ये तो पुरातन। आत्मा पुरातन भूपति, हजारों हजारों वर्ष पुराना ये राज खानदान का, रजवाड़े का राजा है, ये खानदानी राजा है ये। लेकिन दुख की बात है, खानदानी रजवाड़ा होते हुए भी, राजा होते हुए भी, दुख की बात है कि अब जाकर इस समय इसकी अवस्था कैसी है? पीत मोह मई मदिरा मदा कुलम। मोह मई मदिरा पीतम मदा कुलम। मोह रूपी मदिरा का पान करके ये उन्मत्त हो चुका है। परिणाम क्या हुआ हमारा? राजा लोग मदिरा पीते, हर्जा क्या है? बोले मदिरा पी ले तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन मदिरा पीते पीते अपनी राजसी ठाट बाट को भूल जाए, यही दुर्भाग्य है। है हाँ राजा, और मदिरा के चलते क्या हो रहा है? अपनी राजसी ठाट बाट वो सब भूल गए और परिणाम क्या हुआ, किंकरस्य मनसोपि किंकर ही इंद्रिय ही आह किंकरी कृता। बड़ी दुख की बात है कि वह नौकर के भी नौकर के यहां नौकरी करके गुजारा कर रहा है। किसके यहां नौकरी कर रहा है? मालिक के यहां नौकरी करे तो गनीमत है भाई। नौकरी किसके यहां कर रहा है? हैं? नौकर के भी नौकर के यहां नौकरी कर रहा है। तुम पहले राजा थे, उस समय तुमने जिसको नौकर रखा था, आज तुम्हारी राजपाट सब तुम्हारे मदिरा पान करते करते, मोह मदी मई मदिरा का पान करते करते उन्मत्त होते होते तुम्हारे राजपाट सब चौपट हो गया। परिणाम क्या हुआ, जिसको तुमने राजा थे उस समय नौकर रखा था, उसने भी अपने यहां जिसको नौकर रखा था उसके यहां जाकर तुम आज टुकड़ों के लिए नौकरी करके गुजारा कर रहे हो। क्या विडंबना है। किंकरस्य मनसः अपि किंकर ही इंद्रिय ही आह किंकरी कृता। आत्मा तो राजा था, सम्राट था, आत्मा की सेवा करने के लिए, आत्मा के मातहत में रहकर, आधीन में रहकर काम करे, इसके लिए परमात्मा ने मन का सृजना की, मन की सृष्टि की, मन की रचना की और मन को नियुक्त किया कि ऐ मन, तो आत्म सम्राट की सेवा करना है ठीक से। तो मन ने कहा कि आपकी जो आज्ञा है हम करेंगे भाई। तो आत्मा भूपति ने कहा था कि तू सेवा करेगा हमारी, बोले और करेंगे। अच्छा ले चल, तो मन को अपने नजदीक रख लिया आत्मा ने, क्योंकि राजा का मंत्री मने सेवक है वो मंत्री है, वो भी छोटा मोटा तो है ही नहीं, राजा के नजदीक रहने वाला छोटा मोटा तो है ही नहीं। तो उसने भी अपने यहां नौकरी करने के लिए नौकर रख ली थी, तो किसको रखा था, बोले इंद्रियों को। बड़ा तगड़ा है ये मन है। राजा ने तो एक कर्मचारी रखा था, उस कर्मचारी ने तो 10 रख ली कर्मचारी, बोल मां है इतना बड़ा कर्म होगा ये, 10 इंद्रिया अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया किसने, मन ने। अब इंद्रियां जो है यानी मन रूपी नौकर के नौकर इंद्रियां तो क्षुद्र हैं, सामान्य भी हुआ तीसरी क्लास चौथी क्लास के कर्मचारी हो गए ना वो, आप लोगों की भाषा में वो कौन से क्लास के कर्मचारी है, तीसरे चौथे क्लास के कर्मचारी है। हाँ, तो अक्सर देखने में आता है अभी अभी मर गए ना दारू पी के, हैं? तो ये दारू पी के मरने वाले कोई बंबई के सेठ थोड़ी थे, उसमें बेचारे वही ऑटो रिक्शा चलाने वाले, घर के बर्तन मांजने वाले, कपड़े धोने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले, वही ग्रुप था, बिल्कुल लोअर क्लास के व्यक्ति थे वो लोग, और वो भी पीते थे और पी गए मिथाइल, क्या नाम है वो केमिकल, पी गए सब दारू के नाम पर, सब मर गए। तो ये इंद्रियां स्वाभाविक ही रूप में विषय रूपी मदिरा पीने लग गए, तो कभी कभी इंद्रियां 10-10 मिलकर अपने मालिक मन को भी कहा, अरे साहेब आप भी लगा लीजिए एक घूंट, यही भाषा बोलते हैं ना वो लोग, ऐसा है आप भी जरा घुट लगा लो। तो मन रूपी जो मालिक था वो भी, अच्छा भाई तुम लोग लगा रहे हो तो हम भी एक घुट लगा लेते हैं, लगा लिया। परिणाम क्या हुआ कि उसने अपना मालिक जो आत्मा भूपति था उसको भी जाकर कहा, साहेब आप भी एक घुट लगा लीजिए, है उसको भी बुला लिया। करते करते उनके साथ मिल मिलकर सब अपनी सम्राटपना चौपट कर गए। अब परिणाम यह हुआ कि अपनी दैनंदिनी गुजारा के लिए कहां जाएं, तो अब वह इंद्रिय रूपी नौकर के नौकर इंद्रियों के नौकरी कर रहा है। आज इंद्रियां जो कह रही हैं वो मानने लग गया है। कौन? आत्मा रूपी भूपति है, मन के नौकर के नौकरों का जो कहते हैं वो मानने लगा, क्योंकि इंद्रियां एक टुकड़ा दे देती हैं उसी के लिए ही आत्मा दिन भर भटकता रहता है। प्रचरत्यभित प्रगल्भ वृत्या मदवाने समन करी गरीयान परिग्रीय नये न भक्ति रज्वा परमस्थाणुपदम दृढ़म नयामुम। अमुम मन इस हाथी को, इस मन रूपी मन करी मदवान मन करी, इस मन उन्मत्त मन रूपी हाथी को भक्ति रज्जुआ परिग्रीह भक्ति रूपी रस्सी से अच्छी तरह बांध कर दृढ़म स्थाणु पदम मजबूत खूंटे में ले जाकर इसको बांधो। अमम नया ले जाकर बांधो। अब आप ही बांधो महाराज, हमारे में ताकत नहीं है, हमने कोशिश तो किया लेकिन हम नहीं बांध पाए, अब आप ही बांधो। स्थाणु शब्द वेदांत में बहुत प्रयोग होता है। यहां स्थाणु कहते हैं, गीता में भी ये पद आ चुका है ना, अचलोयम सनातन स्थाणु कूटस्थ शब्द प्रयोग करते हैं। स्थाणु माने कूटस्थ, कूटा हिलाने पर भी न हिले, कूटस्थ अविचल अविक्रिय। परमात्मा स्थाणु है, कूटस्थ है कि मन जो है वह जब तक उस स्थाणु के साथ बंधेगा नहीं तब तक ये भटकेगा, परमात्मा से साथ जुड़ेगा नहीं तब तक ये भटकता ही रहेगा। अब यहां तक तो स्तुति का क्रम है। भगवान शंकराचार्य जी इस श्लोक के द्वारा, ये 98वां जो श्लोक है, इस श्लोक भगवान शिव को अर्पण करना चाहते हैं। यानी इस श्लोक के द्वारा पूरी शिवानंद लहरी नामक जो स्तोत्र है सब को भगवान शिव को अर्पण करना चाहते हैं। कैसी है तुम्हारी स्तुति? शिवानंद स्तोत्रम लहरी नामक स्तोत्र कैसी है? शिव के अनुकूल है कि नहीं? परमात्मा के अनुकूल है कि नहीं? शंकराचार्य जी अपने मुख से बखान करते हैं। आप लोग तो गृहस्थी हो ना, है ना? आपकी एक जवान बेटी हो, वो शादी करने लायक हो तो आप लड़का या लड़के के मां बाप से संपर्क रखते हो और गुजारिश करते हो, सिफारिश करते हो, अनुरोध करते हो कि हमारी कन्या आपके घर में बहू बनकर आवे, है ना? लड़के को कहते हो कि आप अपने पत्नी बना लो, लड़के के मां बाप से कहते हो कि आप अपने घर में बहू बनाकर लाओ, तो कदाचित उन लोगों ने पूछ लिया कैसी है तुम्हारी लड़की, तो तुम क्या कहोगे? बहुत गंदी है, बोलोगे? बोलोगे? कोई बोलेगा अपने मुख से? काली है, कलौटी है, लंगड़ी है, हैं? बोलोगे? मूर्ख है, दुर्गुण से भरी हुई है, ऐसा कोई बोलेगा? बोलो, कोई मां बाप अपने लड़के के बारे में हैं बोलेगा कोई? हाँ, ये बात अलग है, शादी करके घर में बहू बनाकर ले आने के बाद सास जरूर बोलेगी कि ये कुलक्षणा है, कुलंगार है, है? चांडाल है, है? भले हर हजार उसके दुर्गुण बखान करेगी। कौन? सास। लेकिन सास इस प्रकार के दुर्गुणों का बखान करते हुए भी उस बच्ची, उस बेटी की मां अपने बेटी का हमेशा सद्गुणों का ही बखान करेगी। करेगी कि नहीं, बोलो? आप लोग यही करते हो कि नहीं? हैं? यही करते हो? इसीलिए यदि दोष है तो दूसरे के माल पर है, अपने माल पर कोई दोष नहीं है। ग्राहक भी यही कहता है, तुम किसी दुकान में कोई माल खरीदने जाओ तो एक मुझे ये वस्तु चाहिए दिखाइए, बोले हाय है बढ़िया है लीजिए, एक वस्तु निकालेगा, अब उसको देखा, इधर देखा, उधर देखा, यूं देखा, त्यों देखा, फिर दूसरी बार कहा कि आपके पास दूसरा नहीं है? बोले ये ले जाइए, ये बढ़िया है, देखो इस कंपनी का है, देखो ऐसा है वैसा है। बोले नहीं नहीं, कोई दूसरा दिखाइए इसके अलावा, नहीं है? बोले हाय हाय, पहले उसका गुणानुवाद गा किया, फिर कहता कि नहीं दूसरा अच्छा, दूसरा लीजिए, ये इससे बढ़िया है। फिर कहेगा वो, अरे इससे बढ़िया तो पहले क्यों नहीं दिखाया? पहले वही बढ़िया कहता रहा, जब कहा कि कोई दूसरा दिखाइए तो वो कहता इससे बढ़िया ये लीजिए। फिर आप उसको देखते रहेंगे, फिर कहेंगे और दूसरा नहीं है? नहीं है। अच्छा चलते हैं दूसरे दुकान में। नहीं नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, मैं आपको और बढ़िया दिखाता हूं, बोलता है। और इससे दोनों से और भी बढ़िया था तो पहले क्यों नहीं दिखाया उसको? तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं वो लोग, और करते 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 क्या है पता है? व्यापारी, आप लोग व्यापारी हो तो करते क्या है? सो सबसे घटिया है उसको लास्ट में सबसे बढ़िया करता है, करके प्रस्तुत कर देता है, ये तो इतना बढ़िया है, एक ही पीस बचाए हमारे पास, तो ऐसा सम्मोहित, हिप्नोटाइज कर देता है ग्राहक को, तो लास्ट में कहता है अच्छा ये ठीक है ये पैकिंग। तो सबसे बढ़िया पहले दिखाया था उसने, उस पर आपकी नेत्र आपकी दृष्टि नहीं टिकी तो समझता है कि ये भ्रमित हो रहा है, इसको ठीक से उल्लू बनाओ, फिर उससे घटिया फिर दिखाएगा है, उसके गुणानुवाद गाएगा, उस पर भी आपकी दृष्टि नहीं टिकी, उससे और घटिया दिखाएगा, उसकी खूब बखान करेगा है। ये साइकोलॉजिकली ये होता है, करते करते सबसे घटिया माल दिखाएगा और बखान ऐसा करेगा कि आप सम्मोहित हो जाएंगे। हाँ, इसने वास्तव में असली पीस लुका के रखा था, वो तो कहता ही यही है, है? कई बार इसके लिए आए, हमने लुका के रखा ही क्योंकि हमारे पास एक ही पीस था, क्योंकि अब आपको जरूरी है तो आप ये पीस ले जाइए, लेकिन पैसा इतना लगेगा, उल्लू बना दिया बस तब तक। और आप उसके बातों पर ऐसा आ गए कि उसने जितना कहा उतना दे दिया। बड़ा विचित्र है, अपने माल सभी प्रशंसा करते हैं। अब दुकान में जो माल रखी होती है, दिन में 100 ग्राहक जाते हैं, उन माल को 100 के 100 ग्राहक 10-10 बार देखते हैं, अल्टा पलटा करके देखते हैं कि नहीं। तुम गए, तुमने भी उसको देखा, छोड़ दिया, वो गए, वो भी नहीं देखा, छोड़ दिया, तो माल बिकता भी जाता है, वही माल 50 को दिखाते रहते हैं और सब बिक जाता है। तुमने जिसको छोड़ा था, दूसरा उसको खरीद के ले जाएगा, दूसरे ने जो छोड़ा था, तीसरा उसको खरीद के ले जाएगा, तीसरे ने जो छोड़ा था, चौथा उसको खरीद के ले जाएगा। आखिर दुकान के सारे माल बिक जाते हैं कि नहीं, बोलो है? तुमने छोड़ा था, फिर सबको छोड़ना चाहिए था ना, दूसरे लोग छोड़ते नहीं है, छांट छांट के बढ़िया ले जाएंगे। हर ग्राहक छांट के ले जाता है और हर ग्राहक छोड़ा हुआ ही ले जाता है छांट के ले जाता है, लेकिन ले जाता है छोड़े हुए, दूसरे ग्राहक का छोड़ा हुआ ही ले जाता है छांट के। ले जी, ये साइकोलॉजिकल है, मनोविज्ञान है ये सब। तब शंकराचार्य जी अपनी कविता की बखान करते हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, है ना? जैसे आप शादी करने योग्य अपनी कन्या का, जब तक शादी नहीं होती है तब तक सबके सामने बखाने ही करते हो, निंदा करोगे? घर में मां उस बेटी को डांट डांट कर रुला के छोड़ती है, हैं? अलची है, नालायक है, मां उसको डांटती रहती है घर में अकेले में। लेकिन वही मां जब लड़कों की बात करने के लिए जब पार्टी आती है, तो मेरी बेटी बड़ी सुंदर है, बड़े गुणवान है, मैं भोजन बनाने जाती हूं तो आती है सर, भोजन बनाने मदद करती है, उसको आता है भोजन बनाने। अब यहां मां जब किचन में भोजन बनाने लगती है, बेटी टीवी देखकर बैठती है तो उसको हैरान करती है डांट के, मां के हाथ बटाती नहीं है, न झाड़ू लगाती है, न पोछा लगाती है, बैठी है टीवी खोलकर, मैं अकेले क्या क्या करूं, कैसे लड़की पैदा हो गई। आप लोगों की भाषा है ये, आप लोगों की भाषा है ये, है? अब जब कोई लड़की देखने के लिए आएगा तो उसके सामने फेरी, मेरी लड़की है, सज्जन है, सफाई बहुत करती है, पढ़े लिखी है, पूजा करती है, भले एक माला न जपती हो, ये व्यवहार में ये सब चल रहा है उल्लू सीधा। अब शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, आप ही मूल्यांकन करना। शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ते हुए कह रहे हैं, महाराज
सर्वालंकार युक्ताम सरल पदयुताम साधुवृत्ताम सुवर्णाम। वाह, सद्भि संस्तूयमानाम सरस गुणयुताम लक्षिताम लक्षणाढ्यम उद्यत भूषा विशेषामुपगत विनयाम द्योतमानार्थरेखाम कल्याणी देव गौरी प्रिय मम कविता कन्यकाम तम गृहाण।
अंतिम लाइन तो समझ गए होंगे ना, हे गौरी प्रिय देवा, भगवान शिव के लिए संबोधन है, हे गौरी प्रिय, हे देवा, इमाम कल्याणीम मम कविता कन्याम त्वम गृहाणा, ये 100 श्लोक की मेरी कविता रूपी कन्या है, मैंने ही इसको जन्माया है, मैंने ही इसको पाला पोसा है, मैंने ही इसको पढ़ा लिखा है और आज ये सर्वयोग्य सर्वगुण संपन्न है। कल्याणी मम कविता कन्याम त्वाम गृहाण, हे देव, ये मेरी कविता रूपी कन्या को आप सहर्ष स्वीकार करिए, वरण करिए, आप स्वीकार करिए, ये कल्याणी है, आपका कल्याण करेगी महाराज। कभी भी आपके मन में, आपके हृदय में, आपके मन में कभी भी खिन्नता व्यक्त करने नहीं देगी, खिन्नता का भाव आने ही नहीं देगी। कैसी है मेरी कविता कन्या,
सर्वालंकार युक्ताम,
सभी अलंकारों से युक्त है, रूप का अलंकार कविता में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष दो होते हैं, एक होता है छंद और दूसरा होता है अलंकार, एक कविता में दो चीज अनिवार्य है, छंद और अलंकार। किस छंद में लिखा हो उसके नियम है छंदों की, और उसमें अलंकार का प्रयोग किया हुआ होता है, कौन सा अलंकार है। बहुत से अलंकार होते हैं, अर्थापत्ति अलंकार, उपमा अलंकार, यत्व अलंकार, प्रतिषेधा अलंकार, परिकर अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, जैसे पहले श्लोक आप लोगों ने पढ़ा, यो या ये यौ यौ, ये अनुप्रास, ऐसा अनुप्रास होता है। उपमा अलंकार, इस श्लोक में उपमा अलंकार कविता को कन्या के साथ उपमित की है, सर्वगुण संपन्न एक कन्या जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से ये सर्वगुण संपन्न कविता है। सर्वालंकार युक्ता, सरल पदयुताम, मेरी बेटी, आप कहते हो ना कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है, अलंकार से युक्त है, और आप खुद ही कहते हो भाई कोई आपकी बेटी देखने के लिए घर में आने वाला हो, बात करने के लिए घर में आने वाला हो, आप खुद ही बेटी को सुबह से ही करते हो, आज कहीं जाना नहीं, घर में रहना, तुझे देखने आ रहे हैं, नहा धो के कपड़े बढ़िया पहन लेना, बेटी कहेगी कि क्या पहनू मां, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले तेरे पास भले ही न हो तो मेरी वो साड़ी पहन लेना। तो आप कहोगे स्वामी जी आपको ये सब व्यवहार कहां से आ गया। तो आप करते हुए मां कहती है कि वो साड़ी पहन ले। अरे साड़ी तो पहन लूंगी, साड़ी खाली साड़ी से तो होगा नहीं मां, गहने मेरे पास तो है ही नहीं। बोले तू आज वो मेरा वो गहना पहन लेना, वो गहना वहां रखी है वो रखी, ले बेटी अच्छी तरह केस कर लेना है। बिल्कुल ऐसा अलंकार पहनकर टिप टाप होकर बैठना कि सामने वाला आते ही देखते ही उसका मन प्रसन्न हो जाए। शंकराचार्य कहते हैं कि हे इतने समय लगाकर मैंने अपनी बेटी को श्रृंगार पटार किया है, सजा के रखा है, सर्वालंकार युक्ताम, जितने भी साहित्य में काव्यों में, ध्यान देना, जितने भी साहित्य या काव्यों में कविताओं में प्रयोग होने वाली अलंकारें हैं, इन कविताओं में शिवानंद लहरी की कविताओं में श्लोकों में मैंने सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। किसी श्लोक में कोई अलंकार तो किसी श्लोक में कोई अलंकार, किसी श्लोक में कोई अलंकार, लेकिन इन श्लोकों में सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, इसलिए हर अलंकार से युक्त है ये श्लोक, ये कविता माने ये स्तोत्र। मैं इसकी कविता के रूप में व्याख्या करूंगा, आप अपने बेटी के रूप में समझते रहना, तो अर्थ लगेगा। ये उपमा अलंकार, सर्वालंकार युक्ताम सरल पद युताम, मेरी बेटी के चरण बहुत सुंदर है, चलती है तो बहुत ही सोम में चलती है, सरल पद युताम। लोग चलने भी नहीं जानते, वो कुछ कुछ व्यक्तियों का स्वभाव होता है वो अलक्षण का प्रतीक माना जाता है। चलते समय में जमीन में आवाज आवे, थम थम आवाज आवे, वो अच्छा नहीं माना जाता है, वो अलक्षण का प्रतीक है। इस तरह जमीन में पांव रखना चाहिए कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति को भी उसके चलने का आहट ना आवे, यही उसके गुण हैं। चलते समय में भी वो सरल पद युताम, आहा क्या सुंदर चलती है, बगल में वह आने आने पर भी उसके आने का कोई पता ही नहीं चलता है। नहीं तो ऊपर छत में दूसरे माले में कोई चलता है ना, नीचे ऐसा लगता है कि वो छाती में ही छत गिर रहा हो। ऐसे भी चलते हैं कि नहीं तुम्हारे सोसाइटी में, बोलो है? है, चलते हैं। अरे भाई धीरे धीरे रखो पांव,